प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग छठा, लेक्चर नंबर 464। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सुवसाहूणं, सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाती कर्मने प्रणमन करू धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृगचारित्र तप वीर्य चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येक ने प्रत्येक ने वंदु वरि मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिए रीते गणधरणे अध्यापको ने सर्व साधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनी जे नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका की रचना की है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें से ये छठी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 12 पर हम आ गए। 1, 2, 12 पहली पंक्ति से शुरुआत करते हम। यहाँ ये कहते हैं कि उसमें उसमें ने किसमें छह द्रव्य है। हाँ, पहले तो द्रव्य सामान्य की चर्चा हुई, अब द्रव्य विशेष यानी छह जो अलग अलग द्रव्य है तो उनके अपने अपने लक्षण जुदे जुदे हैं, उसकी बात यहाँ चल रही है। तो उसमें जीव का आत्मद्रव्य ही एक भेद है। पहले दो मुख्य भेद बताए, जीव और अजीव। जीव में एक आत्मद्रव्य ही है और अजीव द्रव्य में तो पांच अलग अलग है। और अजीव के पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य तथा आकाश द्रव्य, ये पांच भेद है। जीव का विशेष लक्षण, विशेष नाम उसी में रहने वाला लक्षण, विशेष गुण की परिभाषा हमने देखी है, अपने अपने द्रव्य में रहते पर में नहीं रहने वाला चेतना उपयोगमयत्व। दो बातें बताई, चेतना और उपयोगमयपना। उपयोग में क्या, उसमें क्या डिफरेंस है चेतना का? हाँ, वो उपयोग है, बरोबर। ऐसे दो, चेतना गुण है और उपयोग में पर्याय है। समझ में आया? आहा, यह करने का है बापू, बाकी तो सब थोथा ने बेकार है। दुनिया में मान मिला, बड़े विरुद्ध मिले, विरुद्ध समझते, कोई डिग्री पदवी कुछ मिले,
एम ए, एल एल बी, एम बी बी एस, डी सी एस, डी जी बी वगैरह,
कोई भी हो। हाँ, यह तो भगवान चेतन स्वरूप उस चेतना का उपयोग में परिणमन और लक्ष्य में आत्मद्रव्य, केवल परिणमन वो रटना नहीं है, वो हम लक्षण के द्वारा आत्मद्रव्य को पकड़ना है। ये लक्षण उपयोग और चेतना दो कहने में आया, चेतना ऐसा कहा ना, और उपयोग मयत्व यानी उसका परिणमन। वैसे तो चेतना और डैश करके उपयोग कहा, लेकिन चेतना माने परिणमना, त्रिकाल तो है परंतु उपयोग मयत्व कहाँ है। चेतना उपयोग मयत्व यानी चेतना में पना और उपयोग में पना, सर्व विशुद्ध अधिकार में आता है ना भाई, कि लक्षण कहने का क्या कारण है। समय सार सर्व विशुद्ध अधिकार में आता है, लक्षण से बापू भिन्न पना होता है, जिसे आत्मा चेतन में और उपयोग में है यह मालूम नहीं है, उसे ज्ञान कराने को लक्षण भेद करके कहा। लक्षण और लक्ष्य दो भेद हो गया, जिसका लक्षण करते उसको लक्ष्य कहा। क्या लक्ष्य? हमारा आत्मद्रव्य हमारा लक्ष्य है, उसको पहचानना है, तो उसके लिए लक्षण क्या है, तो चेतना और उपयोग में पना उसका लक्षण है। जो जानता है, जानने का जो गुण है चेतना है, ज्ञान दर्शन चेतना है, गुण है, और उसका परिणमना जो है जानन रूप जो कार्य हर समय चल रहा है वो उपयोग में पना है। तो समझाने के लिए भेद करके समझा रहे हैं लक्षण और लक्ष्य। समझ में आया? लक्षण बताते हो तो लक्ष्य और लक्षण दो भेद हो गया। इतना भेद बतलाने का कारण क्या? तो कहते सुन प्रभु, जिसने उपयोग में आत्मा है ऐसा जाना नहीं, तो क्या जाना उसने अभी तक? शरीर ही मैं हूँ, अभी तो बहुत स्थूल है ना, वो तो शरीर मैं हूँ। हाँ, फिर वो राग, मैं रागी हूँ द्वेषी हूँ, पर मैं उपयोग मैं हूँ ये उसने जाना नहीं। तो ऐसा जाना नहीं, उसे लक्षण से बताना है, क्योंकि कैसे पहचानेंगे? वो तो अनादि से तो इंद्रियों के द्वारा पर की ओर ही देख रहा है, तो इंद्रियों के द्वारा तो शरीर ही दिखा, तो उसी को मैं पना मान लिया, और यहीं पर वो जानने का कार्य भी यहीं पर हो रहा है। ये जानने का कार्य तो मेरा है, और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण उसकी जो पर्याय वो तो पुद्गल की है, परंतु ये जिसको पता नहीं है तो इसी में आत्मबुद्धि ने यह मैं हूं ये मान्यता अनादि की चल रही है। जो देह धारण किया वही मैं हूं ये उसको सिखाना नहीं पड़ता। हाँ, वो उसने मान लिया। इसलिए जिसको पता नहीं है उसको ऐसा भेद करके पहले समझाया जाता है, लेकिन है तो भेद है, तो उपयोग में पर्याय द्रव्य से भिन्न भेद, परंतु जिसे आत्मा जानने में आया नहीं उसे लक्षण से भेद से बताना है। उसका लक्षण ऊपर लक्ष्य नहीं है, लक्षण जिसका है उस पर लक्ष्य है। समझ में आया? क्या कहते? ये लक्षण के द्वारा किसको पकड़ना है? लक्ष्य को पकड़ना है। लक्षण में रुकने के लिए नहीं बताया लक्ष्य। हम लक्षण भिन्न करते हैं तो तुझे शंका हुई ये भेद क्यों करते हैं? भाई, जिसे लक्षण से लक्ष्य का ख्याल नहीं है उसे भेद किए बिना, लक्षण का ज्ञान कराए बिना उसे लक्ष्य में नहीं आता नहीं, ऐसी बात है। ओ तीन लोक के नाथ, क्योंकि जिसको भी अनुभव नहीं है, जिसने अपने को पहचाना नहीं है, पहले उसको लक्षण के द्वारा उसकी पहचान कराते हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? आत्मा का अनुभव करना है, लक्ष्य को ही पकड़ना है, पर उसको समझे कैसे, क्योंकि अभी तक तो उसको जाना नहीं है। उसमें भव्य का निर्णय तो हो गया, लेकिन मिथ्यात्व का नाश होकर सम्य दर्शन का निर्णय हो गया। यहाँ यह बात है, यानी जिसने वो उपयोग में लक्षण और चेतना को पकड़ लिया, उसके द्वारा लक्ष्य को आत्मा को अनुभव कर लिया है, उसके सम्य दर्शन हो गया और वो भव्य है ये भी नक्के हो गया उसके। कल इसकी चर्चा अपनी हुई थी। 13 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। जीव का विशेष लक्षण चेतना उपयोग मयत्व, चेतना में पना और उपयोग में पना है। 6 सामान्य द्रव्य में से जीव द्रव्य के विशेष लक्षण द्वारा भिन्न किया। 6 भिन्न भिन्न है क्योंकि उनके लक्षण जुदे जुदे है, तभी तो 6 नाम अलग अलग है। छह द्रव्य से भिन्न अपने विशेष लक्षण से उसके ख्याल में आया। पर का लक्ष्य करके स्व का लक्ष्य हुआ ऐसा नहीं। देखो छह द्रव्य से भिन्न बताया, पांच द्रव्य से भिन्न नहीं बताया, क्योंकि अन्य जीवों से भी मैं भिन्न हूं ना, तो अपना उपयोग में अपना अपने ख्याल में आता है, तो अपना स्व का लक्ष्य करना है। किसमें आता नहीं है, सातवा द्रव्य हूं मैं, दीपचंद जी कांसलीवाल के उसमें कहीं पर है, ये छह द्रव्यों से मैं भिन्न सातवा द्रव्य हूं ऐसा उसमें आता है, वो अपेक्षा है, क्योंकि मैं अन्य जीव रूप नहीं हूं। यहाँ पर ये बताए छह द्रव्य से भिन्न बताए ना, यहाँ पर अपने विशेष लक्षण से उसके ख्याल में आया। पर का लक्ष्य करके स्व का लक्ष्य हुआ ऐसा नहीं, यानी कि पांच द्रव्य का ज्ञान हुआ उससे लक्ष्य में नहीं आता, नहीं समझे। पुद्गल का ज्ञान हुआ तो आत्मा लक्ष्य में आया कि नहीं आया, सोचना पड़ता है,
नहीं आया।
अच्छा क्या कहते हैं, पांच द्रव्य का ज्ञान हुआ उससे लक्ष्य में नहीं आता, आत्मा उसके द्वारा लक्ष्य में नहीं आता। वह तो पांच द्रव्य का ज्ञान हुआ, वह पर्याय में हुआ। अब पर्याय में द्रव्य का लक्षण लेना है, उपयोग में परिणमन में द्रव्य का लक्षण है क्या, प्रभु की शैली, तेरे प्रभु की शैली। हाँ हा हा, वह जीव का उपयोग मयता कहकर पर से भिन्नपना बताया। क्या कहते हैं, अरे ये उपयोग में तो पर ही जानने में आ रहा है ना, हाँ, पर वो पर जानने में आ रहा है, वो जानना मेरा लक्षण है, उसमें पर की बात नहीं है। भले पर जानने में आ रहा है, परंतु क्योंकि ज्ञान ये प्रकट लक्षण है ना, वो जानने में, ये जाना ये जाना ये जाना ये चीज जानी, वो क्या है, वो तो जाना तो मैंने जाना है, तो ये जानना ये मेरा लक्षण है। भले पर संबंधी ज्ञान हुआ, पर ज्ञान हुआ ये लक्षण किसका है, मेरा है। यानी वो ज्ञान हुआ वो पर को नहीं प्रसिद्ध कर रहा है, वो मेरे को प्रसिद्ध कर रहा है। तो कहते उस पर से भिन्नपना बताया, जिसने भिन्नपना जाना उसने आत्मा को जाना। समझ में आया। अब अजीव की बात करते हैं। अजीव का विशेष लक्षण यानी पांच द्रव्य का आत्मद्रव्य से भिन्न लक्षण। आत्मद्रव्य से भिन्न लक्षण कहा, इस लक्षण से अजीव जानने में आता है। अचेतन पना है, कौन सा है वो, अचेतन, और आत्मद्रव्य का चेतना गुण, चेतना भी लक्षण था और उपयोगमय पना भी लक्षण था। वहां जीव के स्वधर्मों में व्यापने वाली होने से जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई, कौन है ऐसे प्रकाशित होती हुई, चेतना, चेतना का वर्णन चल रहा है। चेतना कैसी है, देखो फिर से, जीव के स्वधर्मों में व्यापने वाली होने से, वो सभी गुणों में सभी स्वधर्मों में व्याप्ती है चेतना। अब चेतना की व्याख्या करते हैं, अचेतन और चेतना दोनों को भिन्न किए। अब जीव के स्वधर्मों में व्यापने वाली होने से, व्यापने वाली होने से जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई, ये बड़ा वाक्य है ना, पहले में क्या है, वो सभी स्वधर्मों में व्याप्ती है चेतना, और कैसे उसके कारण क्या हो रहा है, जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई, कौन, चेतना, और चेतना के परिणाम। बातें बहुत सूक्ष्म, यह तो धर्म कथा है ना बापू, आहा हा। जीव के स्वधर्मों में व्यापने वाली होने से जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई, और कैसे, अविनाशिनी, यानी चेतना जो है वो अविनाशिनी है, भगवती, यह चेतना भगवती स्वरूप है, संवेदन रूप चेतना के द्वारा। ये सारे उसके वर्णन चल रहा है अभी तक, पहले में पहले बताया था कि स्वधर्मों में व्याप्ती है, क्यों करते, जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती है, और कैसे, अविनाशिनी है, भगवती है, और कैसे, तो संवेदन रूप चेतना के द्वारा, अर्थात अंतर में चेतना के वेदन द्वारा, चेतना के द्वारा, तथा चेतना परिणाम लक्षण, चेतना का परिणाम लक्षण ऐसा जो उपयोग द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा, चेतना परिणाम कहो या द्रव्य परिणति रूप उपयोग कहो, उसके द्वारा द्रव्य की परिणति यानी चेतना की परिणति है वह द्रव्य की परिणति। ये स्वद्रव्य की बात चल रही है अपने विशेष का इतना सारा स्पष्टीकरण, यह तो मूल तत्व की बातें है बापू। हाँ हाँ, फिर से दोबारा बता रहे, जीव के स्वधर्म में व्यापने वाली चेतना, आत्मा में स्वधर्म यानी स्वभाव में व्यापने वाली चेतना, स्वरूप रूप से हाँ, शरीर का रूप नहीं परंतु स्वस्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई अविनाशिनी भगवती संवेदन रूप चेतना के द्वारा, वो चेतना स्त्रीलिंग है तो ये सारे को अविनाशिनी भगवती ऐसा कह दिया, इतनी चेतना की बात कही। अब 14 नंबर के पृष्ठ पर आना, तथा चेतना परिणाम लक्षण। अब परिणाम आया, ख्याल में तो परिणाम आया है परंतु ये चेतन है ऐसा ख्याल चेतना लक्षण से आया। क्या कहा? चेतना लक्षण यानी गुण कहा। ख्याल तो परिणाम में पर्याय में आया, पर पर्याय में क्या आया? वो चेतना का परिणाम है, चेतना गुण है और उसका वो परिणमन है। पर वो चेतना किसको बताती है? द्रव्य का लक्षण है ये कह रहे हैं, यानी परिणमन है वो चेतना को बताता है और चेतना है वो अपने द्रव्य को बताता है, आत्मा द्रव्य को बताता है। वह परिणाम ख्याल में आया तब ख्याल आया, यहां तो चेतना से चेतन है ऐसा बताया। समझ में आती है मेरी एक एक बात स्टेप बाय स्टेप। ये कल भी बात आई थी कि चेतना के परिणमन, क्योंकि चेतना तो गुण है, वो तो ध्रुव है, ध्रुव से ध्रुव ख्याल में नहीं आता है, वो तो पर्याय में ही ख्याल भी आएगा। तो चेतना का परिणमन हुआ है, जानन रूप जो कार्य हुआ है, उपयोग जिसको कहते हैं, उसके द्वारा वो चेतना को हमने पहचाना और चेतना के द्वारा क्या ख्याल में आया? द्रव्य ख्याल में आया। बाद में चेतना परिणाम यानी उपयोग, पहले चेतना कायमी चीज बतलाई, अब उसका उपयोग बताते हैं। भाई यह चेतना को यानी चेतन को प्राप्त करने की रीत है, भले ही उसे ऐसा कहने में आए कि सर्वप्रथम अधकरण अपूर्वकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण लब्धि होती है, परंतु वह व्यवहार की बात का ज्ञान कराया। परंतु वास्तव में तो चेतना का अर्थ वह ऐसे कारण से प्रकट हो, वास्तव में तो चेतना का अर्थ वह ऐसे कारण से प्रकट होती नहीं, तीन कारण अधकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। वास्तव में तो चेतना के उपयोग के परिणाम द्वारा आत्मा जानने में आता है। वो तीन कारण का करण क्या कहना था ऊपर, ठीक है करण होगा शायद, कारण से प्रकट होती वह तो ऐसे कारण, कारण पहले तो ठीक है परंतु तीन कारण बताए ना, वहां तीन करण होना चाहिए शायद। तीन करण कौन से है ये सुने हैं कभी? हाँ उमा बहन, ये नाम कभी सुने अपने? देखो देखो क्या होता है, समय दर्शन होता है तो उसमें जो विशुद्धि के बढ़ते हुए विशुद्धि के जो है कि एक बार ये करण परिणाम में जीव चढ़ गया, यानी वो तो कर्णयोग की भाषा है, तो समय तो लेकर ही छूटेगा, यानी अभी वहां बीच में से वापस मुड़ेगा मिथ्यात्व में ऐसे ही बात। पहले अधक करण होगा, फिर अपूर्व करण, फिर अनिवृत्ति करण, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बाद छोड़ दो यहाँ पर। ये तीन करण परिणाम है, यानी वो तो आत्मसन्मुखता हो गई पर तभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, इसी बात है वहां पर। तो कहते कि तीन करण परिणाम के द्वारा वास्तव में क्या हो रहा है, वो तो तीन करण परिणाम वहां तो जीवों के ही परिणाम है और वहां कर्मों में क्या विशेषता है उसकी भी बात बताई जाती है तो जीव के परिणाम। तो कहते वास्तव में तो चेतना के उपयोग के परिणाम द्वारा आत्मा जानने में आता है। उपयोग का परिणाम यानी क्या है? वो चेतना का जो परिणमन है, कौन सा परिणमन, अपने को जानता हुआ वो उसकी पर्याय प्रकट हुई है। आत्मा का अनुभव वाली जो पर्याय है उसमें ये जानने में आया है, परंतु उसके जो विधि बताई ना, प्रोसेस, तो उसमें ये तीन कर्णों की बात आती है। इसलिए कहते वास्तव में तो उसमें ख्याल में आता है। आगम भाषा से करण कहा है, अध्यात्म भाषा से शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहा है। ये जयसेनाचार्य भी हमेशा कहते हैं आगम भाषा में और अध्यात्म भाषा में। आगम में क्या कहेंगे, आगम भाषा में वो तीन करण परिणामों के द्वारा, और अध्यात्म भाषा में क्या कहेंगे, वो स्वसन्मुख परिणाम हुए उसके द्वारा। इस परिणाम की यहाँ बात है। चेतना परिणाम लक्षण धीरे से समझ में आए ऐसा है भाई, धीरे से बात चलती है। अरे रे, उसने अनंत काल में चेतना चेतन की है, चेतना स्वधर्म में व्याप्ति है और उसका परिणमन होना वह उपयोग है, ऐसा वो अवसा हुआ ऐसा जाना नहीं। क्या कहा, अनंत काल में चेतना चेतन की है और चेतना जो है वो स्वधर्म में व्याप्ति है और उसका परिणमन है, उसको उपयोग कहेंगे, ऐसा उसने जाना ही नहीं। इस उपयोग द्वारा चेतना धर्म में व्यापक है ऐसा ख्याल में आता है। उपयोग के द्वारा क्या ख्याल में है, वो चेतना है वो स्वधर्म में व्यापक है, चेतना स्वधर्म में व्यापक है ऐसा ध्रुव चेतना द्वारा ख्याल में नहीं आता। चेतना कैसी है, ध्रुव है, ध्रुव के द्वारा वो ध्रुव ख्याल में नहीं आता। तो किस द्वारा आता है, तो परिणमन के द्वारा ख्याल में, पर्याय के द्वारा ही ख्याल में आता है। ऐसा उपदेश ऐसा तत्व, यह तो मूल रकम की बात है। भगवान चेतना स्वरूप, उसका परिणमन चैतन्य उपयोग। चेतना स्वरूप यानी वहां गुण लिया उसका, लक्षण दिया, पर वो लक्षण भी कैसे ख्याल में आएंगे, तो कहते हैं उसका परिणमन चैतन्य उपयोग। चेतना परिणाम लक्षण, परिणाम नहीं ना, चेतना का परिणाम यानी चेतना की पर्याय यानी उसका परिणमन, उसी को उपयोग कहा। यानी है द्रव्य है ना, द्रव्य परिणति रूप। मूल ग्रंथ में फुटनोट में अर्थ दिया है, चेतना का परिणाम स्वरूप उपयोग जीव द्रव्य की परिणति है। ये जो उपयोग जो है वो द्रव्य की परिणति है, ये कह रहे चेतना का परिणाम यानी पर्याय स्वरूप उपयोग वह जीव द्रव्य की परिणति है, जीव द्रव्य की दशा है, धीरे धीरे विचार करना चाहिए। इसलिए उपयोग वो लक्षण बता दिया, जीव का लक्षण डायरेक्ट उपयोग बता दिया है ना। द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा जिसमें निष्पन्न पना अवतरित प्रतिभासित होता है, निष्पन्न होना है रचना रूप पना, अवतरित प्रतिभासित होता है। द्रव्य की परिणति द्वारा सारा द्रव्य प्रतिभासित होता है, ये सिंपल में बता दिया कि पर्याय के द्वारा द्रव्य जानने में आता है। हम पुद्गल की ओर भी देखते हैं, आप पुद्गल का कोई एक गुण बताओ जो आपको जानने में आता है। हाँ दक्षा बेन, पुद्गल का कोई गुण बताओ जो आपको, स्पर्श, तो स्पर्श, इसका स्पर्श कैसा होगा, कड़क। हाँ तो आपने कड़क का पर्याय बताइए, स्पर्श बताओ इसका। पर्याय ही जानने में आती है, यानी वो पर्याय ही प्रकट होती है, व्यक्त पर्याय ही है। गुण तो हम, वो तो पर्याय के द्वारा हम गुण की पहचान करते हैं। कोई भी द्रव्य पर्याय रूप से ही व्यक्त है, उसकी दशा है ना, द्रव्य उस समय उस पर्याय रूप से ही विद्यमान है। तो पर्याय से हम, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण हम कहते हैं, पर उन स्पर्श की कोई पर्याय हमारे जानने में आती है, वर्ण की कोई पर्याय है, पर्याय को लक्षण, परंतु तो पर्याय कायम है क्या, लक्षण ऐसा होता है कि जो त्रिकाल होता है उसको लक्षण कहेंगे, और उसके भी अलग अलग बदल देना क्या, वो पुद्गल हम तो कायम है, स्पर्श गुण कायम है, पर वो हल्का भारी कायम रहेगा, वर्ण कायम रहेगा। जैसे आम हमने लाया तो वो हरे रंग का था, वो वही परमाणु पीले हो गए, परमाणु तो दूसरे नहीं आए थे। गुण कहेंगे हाँ, परंतु यहाँ गुण को, गुण का भी लक्षण बताए, उसके उपयोग है ना, वो कैसे जानने में आता है, तो परिणति में जानने में आता है। इसलिए हमको द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी मालूम होने चाहिए, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण तो हमने बोल दिए, पर वो रस की पर्याय मालूम नहीं है, तो हमको रस को ही ढूंढते रहे, पर वो तो पर्याय रूप से होगा ना उसमें। तो यहाँ चेतना, चेतना क्या है, तो उसके जो उपयोग रूप जो परिणमन हो रहा है वो चेतना का लक्षण, और चेतना पूरे द्रव्य का लक्षण। इसलिए कहते हैं ये जो उपयोग है वो द्रव्य की ही परिणति है। नीचे से चौथी लाइन देखो, द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा जिसमें निष्पन्नपना ने रचना रूपना अवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव है। क्या कहते हैं, उपयोग की परिणति में द्रव्य जानने में आया, शब्दों रही गया। अच्छा हाँ हाँ, उपयोग के द्वारा जिसमें प्राप्ति होती है, अवतरित होता है, उपयोग में प्रतिभासित होता है, उपयोग में जीव जानने में आता है। ये 15 नंबर के पृष्ठ पर आए हुए हम, उपयोग में प्रतिभासित होता है अर्थात सारी चीज चेतना और चेतन इस उपयोग में प्रतिभासित होता है। चेतना भी उपयोग में जानी जाती है और चेतन भी उसके उपयोग में प्रतिभासित होता है, जानने में आता है। उपयोग की परिणति यानी पर्याय में चेतना और चेतन इस उपयोग में प्रतिभासित होता है। सूक्ष्म बात है भाई यह तो, प्रवचन सार, समय सार, ऐसे शास्त्र जगत के भाग्य के ऐसा रह गया, क्योंकि कितना तो जो कहते हैं ना कि लोप हो गया, लुप्त हो गया, तो हमारा भाग्य से ये तो मूल चीज तो रह गई है। भगवान का विरह हुआ लेकिन भगवान की वाणी रह गई, वाणी ने भगवान का विरह भुला दिया। समझ में आया, भगवान की वाणी ने भगवान का विरह भुला दिया। इस प्रकार आत्मा के उपयोग ने आत्मा का विरह भुला दिया कि मैं नहीं जानने में आऊं, ऐसा नहीं है। चैतन्य की उपयोग में परिणति द्वारा प्रकाशमान भगवान अवतरित होता है, उत्पन्न होता है, दिखता है, प्रतिभासित होता है। क्या कहते हैं कि चैतन्य की उपयोग में परिणति के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है। उसमें क्या कहा, भगवान अवतरित होता है, ये कोई अन्य भगवान की बात नहीं है। हाँ, उत्पन्न होता है कहो, दिखता है कहो, प्रतिभासित होता है, ऐसी बात कहाँ है। लोग बेचारे कहाँ के कहाँ चढ़ जाते हैं अन्य मत में, साधु में, और उसे क्या कहते रजनीश, और उसे क्या कहते बाबा, साई बाबा, अज्ञानी, मूढ़, अरे रे, लोग कहाँ चढ़ जाते हैं। जैन संप्रदाय में जन्मे हो वे भी कहाँ चढ़ जाते हैं। भगवान तेरे घर में तू स्वयं है ना, उसे परिणति द्वारा जानने में आए तो उस कुदेव को नहीं माने, कुदेव कुगुरु कहे कि मेरी भक्ति करो, मुझे मानो तो आपको लाभ होगा, चमत्कार दिखाते हैं लोग, सब झूठ। यहाँ एक मुमुक्षु आते हैं, उनका भतीजा पढ़ा लिखा, बहुत लड़कियां आने के बाद लड़का हुआ, तो कहते हैं हम इनको मानते हैं इसलिए लड़का हुआ है। कहो, पढ़ा हुआ, उनके भाई है, वे यहाँ के मानने वाले, और वह साधु को माने, हमने उनको माना इसलिए आठ आठ लड़कियों के बाद नौवा लड़का हुआ, मुंबई में है, ऐसे कहने वाले मिले उनको। उनके भाई कोई मुमुक्ष हो गया, उनका भाई तो अन्य मति में चढ़ गया, ऐसा सुनने नहीं आता। आहा, अरे रे प्रभु, कहाँ गया, उन पाखंडियों के रास्ते पर चढ़ गया, उसका अवतार कहाँ होगा। और वो दुनिया में देखता है यहाँ बहुत भीड़ चल रही है, तो चलो अपन भी चलेंगे, इतने लोग जा रहे तो हम भी जाएंगे वहां पर। यहाँ तो चैतन्य परिणति द्वारा उपयोग का जन्म हुआ तो आत्मा उत्पन्न हुआ, समकित हुआ, उसे अब जन्म मरण नहीं होते, एकाद दो भव हो उसकी कोई गिनती नहीं है, वह तो ज्ञान का गेय है। एकाद दो चार पांच दस भव हो जावे तो ज्ञान का गेय है, बस इतनी है। जैन दर्शन में यह होता है, दूसरी जगह यह बात कहीं नहीं है। उसमें भी दिगंबर दर्शन है, वह जैन दर्शन है, यानी जैनियों में भी जो दिगंबर मत है वही सच्चा जैन दर्शन है। आचार्य तो परमेष्ठी है बापू, पंच परमेष्ठी। आचार्य उपाध्याय साधु ने तो शुद्ध उपयोग को ग्रहण किया है, महाव्रत को ग्रहण किया, ऐसा नहीं क्या कहते हैं? ये महाव्रत का ग्रहण करके वो साधु है ऐसे नहीं, वो तो शुद्ध उपयोग को ग्रहण किया है, परम शुद्ध उपयोग। प्रवचन सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आता है कि आचार्य उपाध्याय 16 नंबर पेज, साधु शुद्ध उपयोग में झूलते हैं। और प्रवचन सार की पहली 5 गाथा में आता है, आपको मालूम है, कभी सुनिए पहली 5 गाथा। अच्छा अच्छा रोज बोलते प्रवचन सर के, प्रवचन सर के हम पढ़ते ना, सुर असुर नरपति वंदने, ये पहली 5 गाथा है।
यानी खारगर से यहाँ तक आते हैं,
हाँ।
तो वर्थ वर्थ
आचार्य उपाध्याय साधु ने परम शुद्ध उपयोग को ग्रहण किया है, यह बात तो पड़ी रही। वो तो एक बाजू, लोग तो उसको समझते ही नहीं है। और क्या चलती है बात, राग और व्रत ले लो। और एक पत्रिका में ऐसा लिखा कि कुनकुंदाचार्य देव ने पहले व्यवहार कहा है, बाद में निश्चय की बात कही है, इसलिए पहले व्यवहार होता है, ऐसा लिखा है। नियम सार में आता है ना कि अब निश्चय कहेंगे, ऐसा आता है। वह तो व्यवहार का कथन पहले आया है, परंतु पहले व्यवहार फिर निश्चय ऐसा नहीं है। लोग कहीं से उसका गलत अर्थ निकालते हैं, मूल ग्रंथों का आगम का भी अर्थ, जो मूल बात लिखी है आचार्यों ने लिखी है, उसमें से गलत अर्थ निकालते और कहते देखो यहाँ लिखा है ना। ऐसा भी लिखा है कि कुनकुंदाचार्य देव को मानते हो तो पंच महाव्रत के साधन से निश्चय होता है, इसे माने तो उसे हम माने, नहीं तो नहीं माने। क्या कहते हैं कि आप ऐसे सामने वाले कहते हैं, क्या कह रहे कि आप कुनकुंदाचार्य देव को मानते हो ना तो पंच महाव्रत के साधन से निश्चय होता है, वो सच्चा है मानना, ऐसा उनका कहना है। ऐसा माने तो उसे माने, नहीं तो उसको नहीं मानने वालों को हम नहीं मानते, ऐसे यानी उनका निषेध करते। इसलिए
कुंदा आचार्य को जो नहीं मानते उनको हम नहीं मानते, ऐसा कह रहे
हैं। ऐसा नहीं है, कुंदा आचार्य को देव को मानते हो क्योंकि ये तो मानते हैं, मुमुक्षु उनको पता है, परंतु कहते पंच महाव्रत के साधन से निश्चय होता है,
ऐसा माने
तो उसे हम माने, नहीं तो नहीं माने,
ऐसा माने यानी तो, और उसके उसे हम नहीं माने नहीं, यानी हम यानी स्वामी जी स्वयं
नहीं
तो वो लोग नहीं मानेंगे।
सामने देखो क्या कहते हैं, ये सामने वाले दलील कर रहे, क्या कर रहे कि कुनकुंदाचार्य ने पहले व्यवहार बताया फिर निश्चय, उसकी बात तो हो गई। अब कहते हैं कि कुंदकुंदाचार्य देव को आप मानते हो ना तो पंच महाव्रत के साधन से निश्चय होता है, ऐसा मानो। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो हम आपको नहीं मानेंगे।
फिर से
विरोधी क्या कहते हैं,
वही तो मैं कह रहा हूँ।
विरोधी स्वामी जी को कहते हैं, क्या कहते
हैं, तुम कुंदकुंदाचार्य को मानते हो,
सुनो पहले, कुंदकुंदाचार्य को मानते हो आप तो पंच महाव्रत और उसके साधन से निश्चय होता है, ऐसा आप मानो तो हम आपको मानेंगे, और आप ऐसा नहीं मानते हो तो हम आपको हम नहीं मानेंगे।
वही तो मैं कह रहा हूँ।
चलो, इसलिए नियमसार का आधार दिया है, परंतु नियमसार में तीन जगह लिखा है कि षट आवश्यक आदि क्रिया है वह निश्चय आवश्यक से विरुद्ध है और उसका फल विरुद्ध है। विरुद्ध क्या है? क्योंकि षट आवश्यक जो क्रिया है, वो जो विकल्प है, वो तो शुभ राग है, राग है वो, और वो तो बंध भाव है। और उसका फल क्या है? संसार में घूमना है। तीन जगह आता है, शुद्ध भाव अधिकार है ना, उसमें नहीं, प्रतिक्रमण है ना, परमार्थ प्रतिक्रमण शुरुआत में आता है, सकल व्यवहारिक चारित्र से और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष, ऐसा जो शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र उसको कहेंगे। यानी परम चारित्र, सच्चा चारित्र क्या है? तो शुद्ध निश्चय नयात्मक, यानी आत्मा में रमणता रूप जो है वो। व्यवहार चारित्र का फल निश्चय है, व्यावहारिक चारित्र से और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष, उसका प्रतिपक्ष बता दिया ना, जिसको व्यवहार चारित्र कहने में आता है, किसको? जिसको निश्चय है उसको। परंतु निश्चय और व्यवहार में तो विरोधी बताया, प्रतिपक्ष बताया। ऐसा जो शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र, उसे कहेंगे। छह व्यवहार आवश्यक से प्रतिपक्ष कहा है, तो क्या प्रतिपक्ष से निश्चय होता है? प्रतिपक्ष यहाँ लिखा है ना, आचार्य ने लिखा है, तो क्या प्रतिपक्ष से निश्चय होगा? व्यवहार छह आवश्यकों से प्रतिपक्ष, शुद्ध निश्चय आवश्यक का अधिकार कहा जाता है। ये नियमसार गाथा 141 का शीर्षक है, समझ में आया? फिर 147 गाथा में कहेंगे, बाह्य षट आवश्यक प्रपंच रूपी नदी के कोलाहल के श्रवण से। ये क्या कहा? प्रपंच बताया और उसको कोलाहल कह दिया। विकल्प है ना ये सब, कोलाहल के श्रवण से, व्यवहार छह आवश्यक के विस्तार रूपी नदी की कलकलाहट के श्रवण से परांगमुख, परांगमुख ने स्वसन्मुख हुआ तो उससे परांगमुख हुआ। व्यवहार के छह आवश्यक से रहित परांगमुख प्रभु, आहा मुनि को कहते हैं, तुम व्यवहार से परांगमुख हो हे शिष्य। शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान तथा शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप स्वात्माश्रित आवश्यक को, उसको आवश्यक कहा। मुनि के जो आवश्यक क्रियाएं बताते हैं तो हम बाह्य क्रियाएं गिनते हैं, तो सबसे आवश्यक क्या है? वो अंतरंग में स्थिरता, रमणता, जिसको कहा स्वात्माश्रित, स्वात्माश्रित आवश्यक। फिर पढ़ती हूँ ये लाइन, नीचे के पैराग्राफ की पहली लाइन, हे शिष्य। शिष्य ने मुनिराज ही अपने संघ के शिष्यों को बता रहे हैं, शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान तथा शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान। ये धर्म ध्यान कौन से गुणस्थानों में होता है? चौदह बोलो, आठवीं से। अच्छा, बहुत हमारे पास बहुत गुणस्थान है। हाँ, चौथे से सातवें तक धर्म ध्यान की बात है, और शुक्ल ध्यान कहाँ तक? चौदहवें तक। हाँ, पहले दो शुक्ल ध्यान है, पहला जो है कौन सा? पृथक्त्व वितर्क विचार, वो आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें में होता है, बारहवें तक होता है, बारहवें के अंत तक होता है, बारहवें के लास्ट में एकत्व वितर्क अविचार, और फिर तेरहवें के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, और चौदहवें में
विपरीत
क्रिया निवृत्ति। ये शुक्ल ध्यान के चार वेद। तो यहाँ क्या कहते, देखो, शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान तथा शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप, वो है तो आत्मा में रमणता की वाली अवस्था, स्वात्माश्रित आवश्यक को प्राप्त कर, स्व आश्रय कर, पराश्रय ने व्यवहार विकल्प को छोड़ दे। व्यवहार विकल्प क्या है? पराश्रय है, उसको छोड़ दे, ऐसी बात है वहां पर। ऐसे कथन पड़े है उसे पकड़े नहीं, क्या कहा? शास्त्र में कहा क्या लिखा है उसको नहीं समझता, और ऊपर उनके फेवरेबल जो कोई कहीं कथन आता है और वो भी कथन नहीं है, वो तो कथन वैसा है ही नहीं, परंतु उसमें से विरुद्ध अर्थ निकालता है।
नहीं, जो अपने को अच्छा लगता है उसको पकड़ेंगे, हाँ, आगे पीछे की बात छोड़ देंगे,
आगे पीछे की बात छोड़ के आधा अधूरा वाक्य उसमें से निकाल लेंगे। ऐसे कथन पड़े हैं उसे पकड़े नहीं और कहते हैं कि पहले व्यवहार होता है, परंतु वह कथन की शैली है। अरे 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 भाई, छह आवश्यक व्यवहार क्रियाकांड का फल तो बंधन है। 17 नंबर का पेज। स्व आत्मा का निश्चय और उसका फल मोक्ष है। ये स्व आत्मा का निश्चय करना है, कैसे करेंगे? अभी बात चल रही है ना, उपयोग के द्वारा। व्यवहार आवश्यक राग रूप है, उसका फल बंधन है, और निश्चय आवश्यक है, वह वितराग पर्याय रूप है, उसका फल मोक्ष है। दोनों एकदम विरुद्ध है, तो व्यवहार करते करते निश्चय कैसे होगा? तो अज्ञानी कहते हैं व्यवहार से निश्चय प्राप्त होता है। क्या है बापू, प्रभु क्या हो, क्या हो, ऐसा कहते करुणा आती उनको, क्योंकि वो तो जैन आगम पढ़कर भी उसमें से विरुद्ध अर्थ निकाल रहे हैं। वे ऐसा कहते हैं, पाठ ऐसा है, व्यवहार पहले कहा, लेकिन वह तो व्यवहार पहले समझाया। ऐसा तो पंचासी काय में भी आता है ना, अनादि से पहले व्यवहार होता है, 172 गाथा में आता है। पहले व्यवहार का अर्थ निश्चय समकित सहित राग की मंदता का भाव पहले आता है, फिर व्यवहार छूटकर अंदर में पूर्ण शुद्धता होती है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि पहले व्यवहार व्यवहार होता ही तब है जब निश्चय हुआ है, समझ में आते हैं ना। व्यवहार की बात कब होगी? जब सम्यक दर्शन ऑलरेडी हो गया तब व्यवहार की बात है। तो वो व्यवहार छूट कर अंदर पूर्ण शुद्धता होती है, यानी सम्यक तो होने पर ही वो निश्चय व्यवहार की दोनों बात है। पहले ना व्यवहार है ना निश्चय है, ये कह रहे। क्या हो, नियम सार में तो प्रभु ने कहा, स्व समय और पर समय के साथ वाद विवाद मत करना। क्या कहा? स्व समय का अर्थ क्या होता है? हाँ बेलोकर जी। आप बोलो। स्व समय ने स्व समय तो स्व समय के साथ क्या वाद विवाद करना है बोलो। हाँ, मत, जैन मत, वो स्व समय, समय का एक अर्थ होता है मत। हाँ, जिन धर्म उसको स्व समय कहते हैं, और पर समय ने अन्य मतियों को पर समय कहते हैं। वो समय सार में जो स्व समय पर समय, तो मिथ्या दृष्टि को पर समय कहा, स्व समय तो हाँ समय दृष्टि को कहा, वो बात अलग है। यहाँ स्वमत और परमत, यानी स्वमत वालों से और परमतवादियों से वाद विवाद मत करना। अरे ये तो अपना अनुभव करने की बात है, वो कुछ अलग समझाए और हम तो अपने बात पर अटे रहे, तो किसी ऐसे वाद विवाद में काल मत खोना। हाँ, परंतु ये तो अलौकिक बातें है, अंदर लायकात के बिना जीव के भेद भवी अभवी उसे प्राप्त बुद्धि का क्षोभशम भिन्न भिन्न है, उसमें तू किसके साथ चर्चा करेगा? क्या कहते हैं? हर एक के बुद्धि का क्षोभशम अलग अलग है, तो चर्चा करने से क्या फायदा है? स्व समय और पर समय के साथ वाद विवाद मत करना। तेरा धन तुझे मिला उसे तू भोग, यानी तुझे वो सच्ची बात समझ में आई है तो तू अपना कल्याण कर ले। ऊपर को समझाने का भाव आता है, ठीक है, परंतु वो तो वो नहीं समझता और मैं समझता हूँ, ये तो तू मिथ्या है और मैं सच्चा हूँ, इसके उस झंझट में मत पड़, कहते। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम, नियम सार के 156 गाथा है। नाना जो है नाना प्रकार के जीव है, उनके नाना प्रकार के कर्म है, अनेक विध वगैरह, तो इसमें कहते कि तू उसमें उलझ मत। हाँ, क्योंकि हर एक की बुद्धि अलग है, हर एक के राग जुदे जुदे होते हैं, तो कहां तक किसको पहुंचाएगा? ऐसी बात कैसे बैठे? व्यवहार के कथन निकाल कर कहे कि देखो यहां लिखा है, परंतु क्या कहा है? देखो, एक होता है निश्चय का कथन, एक होता है व्यवहार का कथन। वो व्यवहार कथन ही उसको सुहाता है, तो निकाल निकाल कर उसको ढूंढ कर बताता है, पर उसमें भी सही अर्थ नहीं निकालता। तो कहते कि वह तो व्यवहार का ज्ञान कराया है, निमित्त का ज्ञान कराने, निमित्त से होता है ऐसा जहां लिखा है वहां निमित्त का ज्ञान करवाया है। देखो ये तो सारा जो करना नियोग जो है कहो कर्म की थ्योरी है, तो निमित्त के कथन आते, जीव ने इतने कर्म बांधे, इतने को उपशमाया, इतने का उदय हुआ, इतने ये सब क्या हो रहा है, वो तो निमित्त, जीव ने तो कुछ नहीं किया उसमें, फिर भी कर्म का उसकी अवस्थाओं का ज्ञान कराने के लिए ऐसे कथन आते हैं, पर वो व्यवहार के कथन है ये समझना हमारी ड्यूटी है। वहां क्या निमित्त का ज्ञान करवाया है जहां ऐसा लिखा है ना, वो कारण ऐसा लिखते कहीं उसका कारण क्या, तो निमित्त का ज्ञान कराते। आचार्य भी ऐसा कहे दो कारण से कार्य होता है, वह तो दूसरी चीज का ज्ञान करवाया है बापू, निमित्त से उसमें कार्य होता है, कार्य के काल में स्वतः कार्य काल होता है तब होता है, भले सामने निमित्त हो। जिस काल में आत्मा का आनंद और शांति का स्वकाल है वह पर्याय तो उस स्वकाल में होती ही है, क्योंकि आत्मा की अनादि आनंद पर्याय सुनिश्चित है, तो जिस काल में उसके वो आनंद और शांति की पर्याय प्रकट होनी है तो उसके स्वकाल में होती ही है, वह जन्म क्षण है, वह उसकी उत्पत्ति का काल है। उसमें कितनी सारी शक्ति है ना, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, कितने पूर्व पर्याय का अभाव हुआ, ये हुए वगैरह, और भाव भाव इन्हें होने वाली होती ही है, अन्य होती नहीं है, तो ये कार्य तो हुआ ही है भले ही निमित्त हो, निमित्त से हुआ है ऐसा कठिन काम है, यानी वो अपने स्वकाल में उत्पन्न हुआ है, वहां वो मिथ्यात्व का पहले से उदय चल रहा था, वहां वो अनुदय चल रहा है, भले औषमिक हो क्षौषमिक हो क्षायिक जो कुछ है, मैं तो हुआ है तो जीव की अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में। यहां कहते हैं उपयोग के द्वारा जिसमें निष्पन्नपना यानी रचना रूपना अवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव है, और जिसमें उपयोग के साथ रहने वाली यथोक्त लक्षण वाली चेतना का अभाव होने से बाहर तथा भीतर अचेतनपना उत्तरित प्रतिभासित होता है वह अजीव है, यानी वो जो अजीव द्रव्य जो है, पांच द्रव्य अजीव है, उनमें अंदर बाहर सब जगह वो तो अचेतनपना ही प्रतिभासित होता है, ख्याल में आता है, वो सारे ही अजीव द्रव्य है। अब 18 पृष्ठ पर नया प्रवचन यहां से पढ़ेंगे, प्रवचन सार 127 गाथा का भावार्थ। अभी तक हमने टीका का प्रवचन पढ़ा, अब उसका भावार्थ। द्रव्यत्व रूप सामान्य की अपेक्षा से द्रव्यों में एकत्व है, यानी छह द्रव्य जो है वो सामान्य लक्षण की अपेक्षा से क्या कहेंगे उनको, द्रव्यपना है, सब सब में एकत्वपना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम कहेंगे अस्तित्व गुण वस्तुत्व गुण में हमने जो छह है तो अनंत, उनकी अपेक्षा से हम देखेंगे तो क्या नक्की हुआ, ये द्रव्य है, तो ये कौन सा द्रव्य ऐसे ना, वो ये द्रव्य है, क्योंकि ये सभी जो छह सामान्य गुण है जीव में भी है, पुद्गल में भी, धर्म अधर्म आकाश काल सब में है, तो उनके द्वारा क्या नक्की हुआ, ये द्रव्य है। यहाँ हमने प्रवचन सार में क्या लिखा था, वो उत्पाद वे ध्रुवत्व देखा था, गुण पर्यव द्रव्य लिखा था, ये सारे लक्षण कैसे है द्रव्य के, यानी द्रव्य सामान्य नक्की हुआ, तो कहते उसकी अपेक्षा से द्रव्यों में एकत्व है। क्या कहते हैं, द्रव्य सामान्य की अपेक्षा से जीव द्रव्य धर्मास्थि द्रव्य अधर्मास्थि आदि द्रव्य रूप से सब एक है, एक कहा उसको, सब उसमें आ जाते हैं, द्रव्य रूप से एक है परंतु प्रत्येक की भिन्नता है, तथापि विशेष लक्षणों की अपेक्षा से सामान्य रूप से तो द्रव्य है, द्रव्य छह है परंतु प्रत्येक द्रव्य का लक्षण भिन्न है, प्रत्येक द्रव्य विशेषपने भिन्न है। समझ में आती ना, सामान्यपने एक है विशेषपने से जुदे है, एक यानी एक जैसे है ना, इसे एक कहेंगे उसको। सामान्य की अपेक्षा से द्रव्यों में एकत्व है, तथापि विशेष लक्षणों की अपेक्षा से उनके जीव और अजीव ऐसे दो भेद है। भेद ज्ञान करना है तो अजीव चीज है उसे जानना पड़ेगा ना, कि उससे मैं भिन्न हूँ। शरीर वाणी कर्म आदि अजीव है, उन अजीव के लक्षण में अचेतनता है और भगवान आत्मा के लक्षण में चेतना है और चेतना अविनाशी भगवती स्वरूप है। आया था ना अविनाशी भगवती त्रिकाल और संवेदन रूप चेतना के द्वारा तथा चेतना परिणाम लक्षण त्रिकाल चेतना स्वभाव, क्योंकि चेतना गुण है तो त्रिकाल है, वो जीव का स्वभाव है तो त्रिकाल चेतना स्वभाव त्रिकाल, वह तो अविनाशी भगवती चेतना है, चेतन की चेतना है और उस चेतन के परिणाम उपयोग लक्षण पर्याय है। चेतना है वह त्रिकाली गुण है, उसके द्वारा आत्मा में चेतना उतरी है और चेतना का उपयोग लक्षण है, वह परिणति भी चेतना में उतरी है, चेतन में झुकती है, शुद्ध रूप से झुकती है, अशुद्ध रूप से भी चेतना गिनने में आई है। पहले तो राग को भी चेतना बताया था, वो तो उन्होंने पहले गिनाए थे। चेतना का परिणमन तीन प्रकार का है, शुद्ध चेतना रूप परिणमन वह धर्म स्वरूप है, अशुद्ध चेतना रूप परिणमन साथ में पुण्य और पाप का परिणमन है, वह अशुद्ध चेतना रूप परिणमन है चेतना की परिणति, फिर भी उस परिणति में शुभ और अशुभ भाव है, वह धर्म स्वरूप नहीं है। पर से तो भिन्न करना है, परंतु अपने में अशुद्ध चेतना परिणाम है उससे भी भिन्न करना है। पहले में पहले राग आदि को अशुद्ध चेतना का परिणाम पहले बताया, वो चेतन रूप है तो चेतना का परिणाम है, परंतु वो अशुद्ध चेतना है, उससे भिन्न करना है शुद्ध चेतना को। सूक्ष्म बात बहुत भाई, अशुद्ध चेतना में तो दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि के भाव होते हैं, वे अशुद्ध चेतना रूप शुभ भाव है, उसमें भी दो बातें, और हिंसा झूठ चोरी विषय वासना के भाव है वे अशुद्ध चेतना रूप अशुभ भाव, दोनों ही शुभ हो यानी पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही अशुद्ध चेतना रूप भाव है। दोनों भाव चेतना की परिणति में है, फिर भी जब द्रव्य दृष्टि करनी हो, देखो ये कैसे यहाँ भेद ज्ञान करना उसकी बात है, पहले में पहले वो चेतना की परिणति है, वो भी चेतना रूप है परंतु है तो अशुद्ध चेतना रूप। जब द्रव्य दृष्टि करनी हो, चेतन स्वरूप है उसकी दृष्टि करनी हो, तो इस चेतना के शुद्ध परिणमन से चेतन का लक्ष्य होता है, अशुद्ध परिणमन से नहीं, अशुद्ध परिणाम से चेतन लक्ष्य में आता नहीं, ऐसी बात है। अशुद्ध है ने पुण्य और पाप, इन्हें पुण्य करते करते आत्मा का अनुभव होगा, ये बात कहाँ रही, क्योंकि अशुद्ध परिणमन से शुद्ध चेतन का अनुभव नहीं होता। कल रात को कहा था वह शब्द धर्म अधर्म है, सुख का कारण धर्म है, दुख का कारण है वह अधर्म, ऐसा वहां लिखा है। सुख दो प्रकार का है, एक आनंद का सुख और एक संसारी सुख, जो सच में सुख है ही नहीं है, पर लोग जिसमें हर्ष मानते हैं सुख मानते हैं उसकी बात। अधर्म शब्द आया इसलिए ऐसा लगा अधर्म अकेले पाप परिणाम को ही कहते हो, या पुण्य को धर्म कहकर पाप को अधर्म कहते हैं। जय धवल में है, धवल जय धवल महाधवल के 35 ने वो
39
ने 32 और 7 39 39 39 भाग है, क्योंकि 16 तो जय धवला के है, जय धवला के भी 16 है, महाधवला के 7 है, उसमें पहले भाग में है। हा हा हा, पुण्य को धर्म कहने में आया, परंतु वह धर्म क्या कि अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेकर जो धर्म परिणति हुई, वीतरागी दशा हुई, वह निश्चय यथार्थ धर्म है, परंतु साथ में राग यानी पुण्य बाकी रहा, उसे क्या कहा, उपचार से धर्म कहने में आया। उपचार किसके हुआ, जिसके वो वास्तव में यथार्थ धर्म प्रकट हुआ है, वो अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुआ है, तो वहां तो साथ में पुण्य के परिणाम है, तो उसको कह दिया, क्या कह दिया, उपचार से धर्म कह दिया। है पुण्य के परिणाम विकार दुख, परंतु यहाँ निश्चय समय दर्शन ज्ञान की अपेक्षा से व्यवहार पुण्य को धर्म कहा। ये निश्चय धर्म प्रकट हुआ तो साथ वाले को भी धर्म कह दिया, ये कहते धर्म है नहीं उसे धर्म कहा, ऐसी बातें। यहाँ यह कहते हैं विशेष लक्षणों की अपेक्षा से जीव और अजीव ऐसे दो भेद है, जो द्रव्य भगवती चेतना के द्वारा, चेतना को भगवती चेतना कहा, चेतना त्रिकाल अविनाशी कहा था ना, अविनाशिनी, चेतन जो आत्मा है उसका जो चेतना गुण है वह भगवती चेतना है। महिमावंत चेतना भगवती, उसके द्वारा एक बात हुई, उसके द्वारा यह जीव है ऐसा जानने में आता है। रुकेंगे अभी यहाँ पर। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो। नलिंद